अस्सलामु अलैकुम। आज पीर है नवंबर की 7 तारीख। पाकिस्तान में असर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में वक्त की तब्दीली के बाद सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान और जनूबी एशिया की खबरों से आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है, उसके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते। पीर को लाहौर में अपनी रिहायशगाह पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि आर्मी चीफ की तकरीरी उनका इशू नहीं है, सरहदों पर खड़े फौजी उनके बच्चों की तरह हैं। साबिक वजीर आजम का कहना था कि वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ किसी भी किस्म के समझौते का सोच भी नहीं सकते। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के शेड्यूल में तब्दीली का ऐलान करते हुए कहा कि यह मार्च अब बुध के बजाय जुमेरात से शुरू होगा। उनका कहना था कि यह मार्च हर सूरत कामयाब होगा और इंतखाब की तारीख लेकर ही वापस लौटेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के कारकुनों ने रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके एहतजाज शुरू कर दिया है। रावलपिंडी में एहतजाज के दौरान पीटीआई के कारकुनान ने मुख्तलिफ सड़कों पर टायर जलाकर ट्रैफिक की रवानी में खलल डाला। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान का कहना था कि कई मकामात पर कारकुनों का एहतजाज जारी है। पीटीआई का एहतजाज आइंदा इंतखाबात की तारीख के ऐलान तक जारी रहेगा, ये उनका कहना था। वजीर आजम शाहबाज शरीफ के मुआविन खसूसी अमीर मकाम ने कहा है कि मुल्क के जो हालात हो चुके हैं, अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में गवर्नर राज नागुजीर हो चुका है। लाहौर के ऐवान इकबाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि इमरान खान के लोगों के पीछे लगकर मुल्क को तबाह कर रहे हैं। पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर में इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान की जमान पार्क में रिहायशगाह में होने वाली मुलाकात में मुनिस इलाही और हुसैन इलाही भी शरीक थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में लॉन्ग मार्च के अगले मरहले और सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत की गई। वजीराबाद वाकई की एफआईआर का मामला भी इस मुलाकात में जेर बहस आया। वाज़ह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटों में इस वाकये का मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मौसम सरमा का आगाज होते ही भारत के दारुलहुकूमत दिल्ली में फजाई आलूदगी की सतह इंतहाई खराब जुमरे में दाखिल हो गई है और दिल्ली और मुजफ्फरनगर में धुंध की तह दबीस हो गई है। पीर के सुबह को पूरा शहर धुंध की चादर में लिपट गया और बाज मकामात पर फजाई आलूदगी की सतह यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली की हुकूमत ने हवा के मैार के खराब होने की वजह से 5 नवंबर से प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए थे और दफातर में स्टाफ की तादाद भी 50% तखफीफ कर दी थी। ताहम उसने पीर को ऐलान किया कि सूरत हाल में कुछ बेहतरी की वजह से 9 नवंबर से स्कूल दोबारा खोले जाएंगे। अफगानिस्तान के सिक्योरिटी के 2 साबिक सीनियर एहलकारों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के कुछ अरकान को जो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद ईरान फरार हो गए थे, अब यूक्रेन में रूस के लिए और यमन में ईरान के लिए लड़ने के लिए भर्ती किया जा रहा है। अफगान फौज के साबिक सरबराह जनरल हिबतुल्ला अलीजई ने कहा कि तेहरान इस वक्त ईरान में रहने वाले साबिक अफगान फोर्सेस की कमजोरी को इस्तेमाल करते हुए उन्हें यमन में हौसी बागियों की सफों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान की एलीट फौजी कमांडो कोर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि साबिक अफगान स्पेशल फोर्सेस को इस वक्त दुनिया के 6 अहम इलाकों में छोटे ग्रुप्स की शक्ल में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें यूक्रेन, ईरान, शाम और रूस शामिल हैं। तालिबान तहरीक के बानी मुल्ला उमर की मौत और तदफीन को बरसों खुफिया रखने के बाद तालिबान हुकाम ने उनकी आखिरी आरामगाह का इंकशाफ कर दिया है। इतवार को तालिबान के तर्जुबान जबीउल्ला मुजाहिद ने खबर रसा इदारे एजेंसी फ्रांस पेरिस प्रेस को बताया कि तहरीक के सीनियर रहनुमाओं ने सूबे जाबुल के जिला सूरी में उमर जू के मकाम के करीब तालिबान की बानी की खबर पर एक तकरीब में शिरकत की। और अब अमरीका और दुनिया भर से मौसूल होने वाली खबरें। सदर बाइडन और उनके पेशरौ डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही उम्मीद कर रहे हैं कि वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज पूरा वक्त अपनी जमातों को तकवीत देंगे और वाशिंगटन में ताकत के तवाजुन को नई शक्ल दे सकते हैं। बाइडन पीर की शाम मैरीलैंड में एक रैली निकाल रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स इस रियासत की गवर्नरी दोबारा हासिल करने पर नजर रखे हुए हैं। रिपब्लिकन्स ऐवान और सेनेट दोनों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए काफी नशस्तें जीतने के बारे में पूर्व उम्मीद हैं, जबकि डेमोक्रेट्स का इसरार है कि वो उससे बेहतर रात के लिए तैयार हैं जितनी के बहुत से तवक्को कर रहे हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने आलमी रहनुमाओं पर मिस्र में आबो हवा पर सालाना सरबराही इजलास में बहुत ज्यादा बाहमी तआवुन पर जोर दिया है। गुतरेस ने आलमी यकजहती के माहदे पर जोर देते हुए खासतौर पर अमरीका और चीन की तरफ इशारा किया कि वो आबो हवा के मसाइल पर मिलकर काम करें। 100 से ज्यादा आलमी रहनुमा बदतर होते हुए एक ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जिसे साइंसदान कुर्रे अर्स का सबसे बड़ा चैलेंज करार देते हैं। फिर भी मुबसरीन का कहना है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके पेश नज़र इस मसले पर पेशरफ्त मुश्किल होगी। पीर को तकरीबन 50 सरबराहान ममलुकत या हुकूमतें मिस्र में आबो हवा पर आलमी सतही बैन अलाक़वामी मुज़ाकरात के पहले दिन गुफ्तगू करेंगी, जबकि आने वाले दिनों में मजीद मुज़ाकरात होंगे। ज्यादातर तवज्जो कौमी रहनुमाओं की उस गुफ्तगू पर होगी जो वो अपने मुल्क में आबो हवा की तबाहियों के बारे में करेंगे, जिसका इख्तिताम मंगल को पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद शाहबाज शरीफ की तकरीर से होगा, जिनके मुल्क में मौसम गर्मा के सैलाब ने कम अज कम 40 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया है और लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ज्यादातर रहनुमा पीर और मंगल को मुलाकात कर रहे हैं, जबकि अमरीका में मुमकिन तौर पर पॉलिसी में तब्दीली करने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात मुनाकिद हो रहे हैं। दूसरी जाने दुनिया के 20 अमीर तरीन ममालिक के लीडर चंद दिनों बाद बाली इंडोनेशिया में अपने ताकतवर वाहिद क्लब का इजलास करेंगे। मजीद ये कि आबो हवा के बड़े और छोटे सरबराही इजलास होते हैं और मौजूदा इजलास के बारे में कभी भी बड़े होने की तवक्को नहीं की गई थी। इंसानी हकूक के निगरान इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने इतवार को एक बयान में कहा कि मिस्र में जारी आबो हवा से मुतालिक कॉन्फ्रेंस COP27 के दौरान मुजाहिरों की कॉल देने वाले दर्जनों अफराद को कॉन्फ्रेंस के आगाज से कबल गिरफ्तार कर लिया गया। तफरीही कस्बे शर्म शेख में जहां ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही है, हिफाजती इकदामात सख्त कर दिए गए हैं। बयान के मुताबिक हुकाम को तमाम टैक्सियों में कैमरे नस्ब करने के लिए कहा गया है, जिससे सिक्योरिटी एजेंसी ड्राइवरों और मुसाफिरों की निगरानी हो सकती है। इसके अलावा मिस्री हुकाम ने COP कॉन्फ्रेंस के मकाम से बाहर ग्रीन जोन तक रसाई की रजिस्ट्रेशन को भी बकौल ह्यूमन राइट्स वॉच गैर जरूरी तौर पर पेचीदा कर दिया है। गुज़श्ता कॉन्फ्रेंसों के दौरान ग्रीन जोन खुला रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि पाबंदियां कॉन्फ्रेंस के दौरान गैर सरकारी ग्रुपों और सहावियों की बामानी शिरकत में रुकावटें डालेंगी, जिससे कॉन्फ्रेंस के कामयाब और मौसर नतज को रोका जाएगा। तालिबान की वजारत खारजा ने एक बयान में मिस्र में आबो हवा की तब्दीली के 27वें सरबराही इजलास का खैर मकदम किया है और आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान को तरक्याती इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। अफगान वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान आबो हवा के खतरात से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में छठे नंबर पर है। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात की वजह से सिर्फ इस साल उसे नुकसान की तलाफी में अब तक 2 अरब अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ है। ईरान में इतवार के रोज यूनिवर्सिटियों और ज्यादातर शिमाल मगरबी कुर्द इलाके में नए मुजाहरे शुरू हो गए, जिन्होंने 7 हफ्तों से जारी हुकूमत मुखालिफ तहरीक को शदीद पकड़ धगड़ के बावजूद बरकरार रखा है। सितंबर के वस्त में महसा अमीनी की हलाकत के बाद शुरू होने वाले मुजाहरे 1979 के इनकलाब के बाद से उलमा की क्यादत के लिए सबसे बड़े चैलेंज में तब्दील हो गए हैं। नॉर्वे में कायम इंसानी हकूक के एक ग्रुप हेंगो ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतवार के रोज कुर्द सूबे के कस्बे मरीवान में फायरिंग की, जिससे 35 लोग जख्मी हो गए। खबर रसा इदारा AFP इस तादाद की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं कर सका है। ताज़ा तरीन मुजाहरा तेहरान में एक कुर्द तालिबा नसरीन गदरी की मौत के बाद शुरू हुआ, जो हेंगा के मुताबिक हफ्ते को पुलिस की जानिब से सर पर हमले के बाद हलाक हो गई थी। ईरानी हुकाम ने अभी तक उसकी मौत पर कोई तबसरा नहीं किया है। बरतानिया की वजारत दिफा ने अमीर को कहा कि यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस के तजर्बाकार फजाई अमले के अरकान की कमी रूस की फजाई बर्तरी के फुख्तान की वजह बन रही है। ट्विटर पर एक ताज़ा पोस्ट में बरतानिया ने कहा है कि रूस की फजाई सलाहियत अगले चंद महीनों में तब्दील होने का कोई इम्कान नहीं है। रूस के हवाई जहाज के नुकसान मुमकिन तौर पर नए एयरफ्रेम बनाने की उनकी सलाहियत से कहीं ज्यादा हैं। खियरसन में इतवार को रिहायशी रोशनी और पानी से महरूम थे, क्योंकि शहर के रूस के मुतय्यन अहलकारों ने बगैर सबूत के यूक्रेन पर तखरीबकारी का इल्ज़ाम लगाया। क्रेमलिन के हिमायत याफ्ता अहदेदारों ने कहा कि यूक्रेन के जरिए अहतमाम हमले में हाई वोल्टेज पावर लाइनों के 3 कंक्रीट खंभों को नुकसान पहुंचा। अहदेदारों ने कहा कि तवानाई के माहरीन इस मसले को फौरी तौर पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम खियरसन के इलाकाई इंतजामिया के सरबरा यानुश्वेच ने बिजली की बंदिशों का इल्जाम रूस पर आयद किया है। ईरान ने हफ्ते के रोज पहली बार इस बात का इकरार किया कि उसने रूस को ड्रोन फराहम किए थे। अलबत्त तेहरान का कहना था कि ये यूक्रेन में जंग शुरू होने से कबल दिए गए थे, जिन्हें रूस बिजली घरों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ईरान पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कीव की अफवाज हर रोज कम अज कम 10 बगैर पायलट की हवाई गाड़ियों को तबाह कर रही हैं। शिमाली कोरिया ने पीर को कहा है कि उसकी हालिया मिजाइल लॉन्चिंग जुनूबी कोरिया और अमरीका पर तकनीकी अंदाज के वर्चुअल हमले थे, क्योंकि दोनों ममालिक ने खतरनाक जंगी मशक की थी। जबकि जुनूबी कोरिया ने कहा है कि उसने अपने साहिल के करीब शिमाली कोरिया के मिसाइल के कुछ हिस्से बरामद कर लिए हैं। गुज़श्ता हफ्ते शिमाली कोरिया ने मुतअद्दिद मिसाइलों का तजर्बा किया था। जुनूबी कोरिया और अमरीकी हुकाम ने यह भी कहा है कि प्योंगयांग ने जौहरी डिवाइस का तजर्बा करने के लिए तकनीकी तैयारी कर ली है, जो सन 2017 के बाद पहली बार की होगी। अमरीकी महकमा खारजा के बयान के मुताबिक अमरीका, जापान और जुनूबी कोरिया के सीनियर सिफारतकारों ने इतवार को फोन पर बात की और हालिया तजर्बात की मजम्मत की। और अब क्रिकेट के बारे में एक खबर है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें एक बार फिर वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में आमने सामने हैं, और पाकिस्तानी शायकीन ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ग्रीन शर्ट्स सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने बेहतरीन रिकॉर्ड को आगे बढ़ाएंगी। दोनों टीमें वर्ल्ड कप के अलावा कई टूर्नामेंट्स में नॉकआउट मरहलों में मुद्दे मुकाबले आईं, जिनमें बेशतर मैचेस में पाकिस्तान ने मैदान मारा। फाइनल में जगह बनाने के लिए 9 नवंबर को सिडनी में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड का सामना करेगी, जबकि इंग्लैंड और भारत की टीमें 10 नवंबर को एडिलेड में मुद्दे मुकाबले होंगी। इवेंट का फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमों में से न्यूजीलैंड वो वाहिद टीम है जो अब तक T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीत सकी है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेइंतहा ममनून हैं। न्यूज़ एडिटर यास्मीन जमील के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।